मुख्य समाचारों में ऐश बार्टी ने की 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा। न्यू साउथ वेल्स के बाढ़ से हानिग्रस्त क्षेत्रों में और भी बारिश की उम्मीद। और भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने की कई मुद्दों पर बातचीत। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार ऐश बार्टी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ने आज बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी दोस्त और साथी टेनिस खिलाड़ी केसी डेलस्का के साथ ये घोषणा की। सुश्री बार्टी ने प्रशंसकों से कहा कि वो उन सबके समर्थन सपोर्ट के लिए आभारी हैं और वो बड़े ही गर्व और स्वयं को पूर्ण महसूस करते हुए टेनिस को छोड़ रही हैं।
I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me all of my dreams plus more. But I know that the time is right now for me to step away and chase other dreams. And to put the rackets down.
महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के खुलासे के बाद निलंबित वैश्विक पेस्टर ब्रायन ह्यूस्टन ने हिलसोंग चर्च से त्यागपत्र दे दिया है। दो महिलाओं के प्रति ह्यूस्टन के आचरण के आरोपों को लेकर शुक्रवार को चर्च ने एक माफीनामा जारी किया। इसके बाद ये इस्तीफा दिया गया है। वैश्विक बोर्ड ने एक बयान जारी कर उनके त्यागपत्र की पुष्टि की और ब्रायन और बॉबी ह्यूस्टन की कई दशकों से अधिक की वफादार सेवा की प्रशंसा की। बयान में कहा गया है कि चर्च ने स्वीकार किया कि परिवर्तन आवश्यक था और वो अपनी शासन संरचना और प्रक्रियाओं की स्वतंत्र समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यू साउथ वेल्स के बाढ़ से हानिग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो अभी भी 3 सप्ताह से अधिक समय पहले हुई धुआंधार बारिश के बाद सफाई कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि संभावित रूप से और हानिकारक मौसम आने वाला है। मौसम विज्ञान ब्यूरो पूर्वी तट के साथ साथ सिडनी, हंटर और मध्य उत्तरी तट और नॉर्दर्न रिवर्स सब जगह कम से कम एक और सप्ताह की भारी बारिश और गर्जीले तूफान की भविष्यवाणी कर रहा है। वो सभी क्षेत्र जो हाल में हुई मूसलाधार बारिश से पूरी तरह से संतृप्त हैं। ब्यूरो के जैक्सन ब्राउन का कहना है कि आज बुधवार से ही तटीय बारिश शुरू होने की उम्मीद है और एक सप्ताह तक छिटपुट रूप से तूफान और बारिश जारी रहेगी।
If we're having a look a bit further in time, you can see that trough advancing further up to the north, detaching over the northern rivers. And by Friday, we're looking at quite a lot of rainfall starting to occur over parts of northeastern New South Wales.
ब्यूरो का कहना है कि लालनीना पैटर्न जो गर्मियों में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़ लाता है, वो खत्म नहीं हुआ है। इस तरह का अप्रत्याशित मौसम महीनों तक जारी रहने की आशा है। यौन शोषण के आरोप के बाद गैरेथ वार्ड द्वारा संसद छोड़ने से इनकार करने के बाद न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे दबाव में आ गए हैं। मंगलवार को श्री वार्ड पर अभद्रता के 3 कृत्यों का आरोप लगने पर प्रीमियर पेरोटे ने कयामा के सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए कहा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेबर विपक्ष अब सरकार से इस बात की पुष्टि करने की मांग कर रहा है कि क्या सांसद को संसद से निष्कासित किया जाएगा। इस बीच स्वैच्छिक सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु अधिवक्ता न्यू साउथ वेल्स संसद को अतिरिक्त दिनों की बैठक के लिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये चिंताएं बढ़ गई हैं कि बीमार लोगों को अपनी शर्तों पर मृत्यु इच्छा की अनुमति देने वाला कानून ठप हो गया है। विवादास्पद बिल जो एक ला इलाज बीमारी से पीड़ित और 12 महीने से कम समय तक जीवित रहने की उम्मीद वाले मरीजों को अपनी मृत्यु में तेजी लाने का अधिकार देता है, वो पिछले साल निचले सदन में 20 वोटों के अंतर से पारित हुआ था। इस पर आज ऊपरी सदन में बहस है और चिंताएं हैं कि बहस के लिए अब पर्याप्त समय आवंटित किया गया। चर्चा के लिए सिर्फ 2 घंटे से अधिक समय दिया गया है। बिल के प्रायोजक एमएलसी एडम सिरली का कहना है कि निचले सदन में बहस में 25 घंटे से अधिक का समय लगा था।
If we're going to proceed at this pace, It won't be done in the balance of this parliament. It would not be acceptable if intransigence in the upper house allowed this matter to drift.
यौन उत्पीड़न के एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि विश्वविद्यालय की लगभग आधी छात्र आबादी ने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है। 2021 के राष्ट्रीय छात्र सर्वेक्षण ने 43,819 लोगों से यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के उनके अनुभवों के बारे में पूछा तो आंकड़ों से पता चलता है कि 6 छात्रों में से एक ने विश्वविद्यालय में शुरू होने के बाद से यौन उत्पीड़न सहा है और पिछले वर्ष में 12 में से एक को परेशान किया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की संभावना अधिक होती है और लैंगिक विविधता वाले छात्रों को सबसे अधिक जोखिम होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 छात्रों ने ही यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत की। पूर्व फुटबॉल स्टार क्रेग फॉस्टर ने कैनबरा में नेशनल प्रेस को संबोधित करते हुए शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यवहार की आलोचना की है। हाल के वर्षों में अपने मानवीय कार्यों को दर्शाते हुए एक भाषण में श्री फॉस्टर ने मान्यता प्राप्त शरण चाहने वालों और बोट से आए शरणार्थियों को यहां फिर से बसने के लिए अनुमति देने से इनकार पर कहा कि वो ये नहीं समझ सकते हैं कि हमने निर्दोष मनुष्यों के साथ क्या किया है। उनका कहना है कि शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की हिरासत सामान्य हो गई है और यही हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में अपेक्षित भी है।
We must, all of us, reflect on the speed of our descent from mandatory detention just 3 decades ago under the Keating government to indefinite imprisonment today for an average of 689 days in conditions that are deliberately inhumane and punitive. This is 12 times that of the US. Canada's average is just 14 days.
यूक्रेन इन्वेजन के बीच नेटो ने आर्कटिक में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ये शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अभ्यास है। अमेरिकी मैरीन नॉर्वे के एक सुदूर क्षेत्र में भूमि, समुद्र और वायु अभ्यास के लिए 2 दर्जन से अधिक देशों के लगभग 30,000 सैनिकों में शामिल हो गए हैं। इन अभ्यासों को कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहा जाता है और इसमें एक ऐसे परिदृश्य का अनुकरण किया जाता है जहां नेटो सहयोगी एक दुश्मन देश को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं जिन्होंने अपने ही किसी एक पर हमला किया हो। लेकिन जनरल मेजर डेविड बर्जर ने एनबीसी न्यूज को बताया है कि इन अभ्यासों की योजना रूस के यूक्रेन पर इन्वेजन करने से महीनों पहले ही बनाई गई थी।
It's naive to think that it's not on people's minds. So absolutely they're tracking it and so are we, but the exercise is completely separate.
NDTV से मिले समाचार के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की और दोनों नेताओं ने सैन्य कार्यवाही प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि पुतिन शासन की कार्यवाही बेहद चिंतित करने वाली और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है। भारत के पीएमओ के अनुसार बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संबंध में भारत की धारणा पर जोर दिया। बताया गया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता में सकारात्मक गति पर संतोष व्यक्त किया। पिछले साल दोनों नेताओं के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए भारत ब्रिटेन रोडमैप 2030 को लागू करने में प्रगति की भी सराहना की गई। इस बीच लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्री जॉनसन ने भारत से क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने के लिए ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। रपात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के 74 सेंट और भारत के 56.76 रुपये के बराबर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल पसली में फ्रैक्चर से पीड़ित होने के कारण मई तक खेल से बाहर हो सकते हैं। नडाल इंडियन वेल्स में फाइनल में पहुंचे और रविवार को टेलर फ्रिट्ज द्वारा सीधे सेटों में उनकी हार सीजन की पहली हार थी। नडाल ने स्पेन लौटने की पुष्टि की और उनकी पसली में एक तनाव फ्रैक्चर है, जिसका अर्थ है कि वो 4 से 6 सप्ताह के लिए खेल से बाहर हो जाएंगे। फ्रेंच ओपन, जिसे उन्होंने 13 बार जीता है, वो 22 मई से शुरू होगा। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।